दिन भर शुक्रवार 25 सितंबर मैं हूं निखिल रंजन। कारोबारियों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठा सकता है पाकिस्तान, भारत जवाब देने को तैयार।
नहीं, मैंने प्रतिज्ञा कल ही दे दी थी, मैंने कहा अगर वो कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे तो हम जवाब देंगे, हमें राइट ऑफ रिप्लाई हमेशा रहती है, हम हर प्रकार की सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, बस मैं सिर्फ इतना कहूँ।
भगदड़ के शिकार हुए हज यात्रियों में 14 भारतीय भी, सऊदी सरकार ने शुरू की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। 1965 के जंग की दास्तान के बाद अब भारत पाकिस्तान के साझी विरासत की चर्चा।
मैं नूरजहां जी का जो गाने का ढंग था बहुत सुरीली थी वो, और दूसरी बात ये थी कि बोल कैसे कहने चाहिए, ये मैंने उनसे ही उस वक्त सीखा।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। भारत ने कहा है कि अगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाया तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कश्मीर पर बयान आया तो भारत जवाब देने के लिए तैयार है। इसके पहले एक पाकिस्तानी राजनयिक ने इस्लामाबाद में कहा था कि शरीफ कश्मीर के महत्व को समझते हैं और वो इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाएंगे। नवाज शरीफ 30 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने वाले हैं। इराक में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता के कोऑर्डिनेटर ने चेतावनी दी है कि करीब 1/4 जनसंख्या को इस साल के अंत तक सहायता की जरूरत हो सकती है। इराक में सरकारी सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच चल रहे युद्ध के दौरान इराक में बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो गए हैं। बीबीसी से जिनेवा में डोमिनिक बार्श ने बात करते हुए कहा कि ज्यादा इराकी लोग यूरोप में शरण मांगने के लिए जा सकते हैं।
Our planning figures for this year are now adding up to 10 million.
हमारे अनुमान के मुताबिक इस साल आंकड़ा करीब 1 करोड़ पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि 1 करोड़ इराकी लोगों को अलग अलग तरह की मदद चाहिए होगी। ये आंकड़ा इराक की जनसंख्या का 1/4 के करीब है। ये थे डोमिनिक बार्श के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने कहा है कि प्रवासियों को हंगरी से क्रोएशिया की तरफ भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रिया के चांसलर वर्नर फेमान ने से वियना में मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सर्बिया की सीमा के पास सख्ती से उम्मीद के मुताबिक परिणाम मिले थे और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि क्रोएशिया की सीमा के पास ऐसा ही किया जाए। लेकिन विक्टर ओरबान ने कहा कि सीमा को सील करने से पहले वो पड़ोसी देशों और संयुक्त राष्ट्र से सलाह मशवरा करेंगे। पोप फ्रांसिस न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के विशेष सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। इस सम्मेलन में कई देशों के नेता गरीबी हटाने, गैर बराबरी और पर्यावरण में बदलाव के मुद्दों पर वैश्विक लक्ष्यों पर चर्चा करेंगे। कल पोप ने अमरीकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया था। सऊदी अरब के सरकारी अधिकारियों ने हज यात्रा के इंतजामों को लेकर उठ रहे सवालों पर अपना बचाव करते हुए हादसे के लिए हाजियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि हो सकता है कि हादसा इस वजह से हुआ क्योंकि हाजियों ने दिए गए निर्देशों को नहीं माना। कल मीना में शैतान को कंकड़ मारने की धार्मिक प्रक्रिया के दौरान भगदड़ हुई थी जिसमें 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और इस बीच पाकिस्तान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में भारत की शिकायत करते हुए एक चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में क्या बात है ये तो हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में। पहले चलते हैं सीधे संयुक्त राष्ट्र जहां इस वक्त पोप फ्रांसिस संबोधित कर रहे हैं सदन को।
The experience of the past 70 years, beyond all these achievements, has made it clear that reform and adaptation to the times is always necessary.
पोप फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित कर रहे हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका में हैं और वो न्यूयॉर्क में कारोबारी नेताओं से मुलाकात करने के बाद बढ़ चले हैं वॉशिंगटन की ओर। थोड़ी देर में आपसे उन पर चर्चा करेंगे। इधर आपको बता दें कि एक चिट्ठी लिखी है पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को, और उसमें शिकायत की है कि भारत नियंत्रण रेखा पर एक दीवार बनाने की तैयारी में है और उसकी कोशिश नियंत्रण रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बदलने की है। उधर भारत में ये सवाल पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में अगर पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला उठाया तो भारत का रुख क्या होगा। आइए सुने कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप इस बारे में क्या कहते हैं।
नहीं, मैंने प्रतिक्रिया कल ही दे दी थी। मैंने कहा अगर वो कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे तो हम जवाब देंगे, हमें राइट ऑफ रिप्लाई हमेशा रहती है। हम हर प्रकार की सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा।
ये थे भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में कारोबारी नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की कुछ बड़ी हस्तियों से मुलाकात करने के बाद वॉशिंगटन की तरफ बढ़े हैं। वहां वो संयुक्त राष्ट्र में ऊर्जा से जुड़ी एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले हैं। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए ज़्यादा जानकारी उन्हीं से लेते हैं। सलीम साहब, स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के इस कार्यक्रम में। आप बताइए कि इस वक्त प्रधानमंत्री कहाँ होंगे और क्या उनका कार्यक्रम अब तक कैसा चल रहा है, क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने वाला है?
जी निखिल, प्रधानमंत्री मोदी ने कल की जो बड़ी व्यस्त कार्यक्रम रहा दिन भर का, और वो वित्तीय क्षेत्र और आर्थिक एजेंडा फोकस रहा था। अब आज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का पूरा दौर जो है फिर वापस आ गया है, और अब से थोड़ी देर में वो संयुक्त राष्ट्र पहुंचेंगे। और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आप जानते हैं कि महासभा में जो एक एजेंडा, विकास एजेंडे पर जो एक सबमिट हो रही है महासम्मेलन, तो उसमें वो संबोधन करेंगे। उससे पहले वो सेक्रेटरी जनरल बान की मून से मुलाकात करेंगे और फिर से करीब ढाई घंटे में वो संबोधित करेंगे इस महासम्मेलन को, और विकास के बारे में जो भारत के बिंदु हैं और भारत का जो रुख है वो वहां पर वो सबके सामने रखेंगे। उसके बाद कुछ द्विपक्षीय जो देश हैं उनसे मुलाकातें हैं, जिनमें स्वीडन, श्रीलंका, भूटान और मिस्र के जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो शामिल हैं, उनमें बायलैटरल होंगी, द्विपक्षीय मुलाकातें होंगी। तो ये मुख्य एजेंडा है आज।
ये सारी बातें, ये सारे आज ही ये हो जाएंगे
मुलाकातें, सारी चीजें आज ही होनी है। जी, ये सारी चीजें।
इसके बाद प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है?
इसके बाद ये कल एक अहम G4 की बहुत अहम समिट है जो भारत होस्ट कर रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी उसको उसके मेजबान होंगे। और जो आप जानते हैं G4 में जर्मनी, जापान और ब्राजील हैं, तो उनके भी जो नेता हैं, जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल, ब्राजील की जो प्रेसिडेंट है दिल्मा रूसेफ, और जापानीज प्राइम मिनिस्टर आबे, ये सब वहां मौजूद होंगे। और ये मुख्य चीज होगी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म्स होने हैं, ये चारों देश आप जानते हैं कि दावेदारी करते हैं परमानेंट सीट के लिए, तो उसी रिफॉर्म्स को में तेजी लाने के लिए ये बैठक हो रही है। ये बैठक चार एक दशक के बाद हो रही है, ये 2004 में समूह बना था, अब ये G4 समूह की बड़ी अहम बैठक जो है कल है। तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कैलिफोर्निया के लिए निकल लेंगे कल ही, और वहां पर उनका दो दिन का कार्यक्रम है 26-27, और फिर 28 को फिर वापस आएंगे न्यूयॉर्क, जहां पर राष्ट्रपति ओबामा से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात है।
न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हम आपके पास फिर अगले कार्यक्रम में भी आएंगे। आप नज़र बनाए रखिए प्रधानमंत्री के दौरे पर और वहाँ जो संयुक्त राष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है इस पर। और अब रुख करते हैं मक्का का। मक्का में कल हज के दौरान हुई भगदड़ में 717 लोगों की मौत के बाद सऊदी शाह सलमान ने हज यात्रा के सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा के आदेश दिए हैं। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर के जरिए बताया है कि जेद्दा में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने हादसे में 14 भारतीयों के मारे जाने की और 13 के घायल होने की खबर दी है। कहा यह जा रहा है कि इन 14 लोगों में से 9 लोग गुजरात के हैं। इधर इस हादसे को लेकर सऊदी अरब के रुख की आलोचना बढ़ती जा रही है। यह हादसा मीना में शैतान के पत्थर मारने की रस्म के दौरान हुआ था। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए प्रगति सक्सेना से।
दुनिया भर में हज के दौरान हुए इस हादसे को लेकर सऊदी प्रशासन की आलोचना बढ़ती जा रही है। नाइजीरिया और ईरान के अधिकारियों ने सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री के उस कथन की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना के लिए हाजी जिम्मेदार थे क्योंकि वे निर्देशों का ठीक से पालन नहीं कर रहे थे। मक्का में नाइजीरिया के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख सानुसी लमिडे सानुसी ने कहा कि हाजियों पर इस हादसे का दोष मढ़ना ठीक नहीं।
सबसे पहले तो ये बताना जरूरी है कि ये हादसा शैतान को पत्थर मारने वाली रस्म की जगह पर नहीं हुआ, बल्कि उस जगह तक आने और जाने के लिए बनाए गए रास्ते में हुआ। इन रास्तों में आने और जाने वाले यात्री एक साथ गुजर रहे थे, जो कि ठीक बात नहीं है। इसलिए हम सऊदी अधिकारियों से अपील करते हैं कि वो हाजियों को निर्देशों का पालन न करने का दोषी न ठहराएं, बल्कि उन्हें तो इस हादसे की वजह पर गौर करना चाहिए।
सानुसी लमिडे सानुसी के शब्द। उधर एक पूर्व सऊदी मंत्री जियाद मेमिश ने कहा कि हज के दौरान लोगों की हिफाजत में सऊदी अरब लाखों डॉलर्स खर्च करता है, लेकिन हादसे तो कभी भी हो जाते हैं। जियाद मेमिश हज के प्रबंधन में शामिल लोगों में से एक हैं। उनका कहना है कि सऊदी अधिकारियों ने सुरक्षा इंतजाम में सुधार लाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। जियाद मेमिश:
I know that from my experience managing some part of the Hajj over the past 10 years.
पिछले 10 सालों से हज के प्रबंधन के अपने अनुभव के आधार पर मैं ये जानता हूं कि सऊदी अरब प्रशासन हज यात्रा को सुरक्षित और सरल बनाने में लाखों डॉलर खर्च करता है, लेकिन कभी कभी हादसे हो जाते हैं। हालांकि अभी जांच हो रही है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि हज में भीड़ भरे वक्त के दौरान कुछ हाजियों के निर्देश पालन न करने की वजह से ये हादसा हुआ होगा।
सऊदी अधिकारियों ने मामले की शीघ्र जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि सऊदी सरकार को इस हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। माना जा रहा है कि हादसे में मरने वालों में करीब 100 ईरानी नागरिक थे। चिमा इला इसोफू बीबीसी हौसा सेवा की संवाददाता हैं। वो भी इस भयानक भगदड़ के वक्त वहाँ मौजूद थी। उन्होंने उस वक्त का हाल कुछ इस तरह बयान किया। चिमा इला इसोफू कह रही है: ये सब कुछ सुबह के वक्त हुआ। कुछ लोग शैतान को पत्थर मारने वाली जगह की तरफ जा रहे थे और कुछ लोग वहां से वापस आ रहे थे। फिर अचानक वहां हड़बड़ी मच गई और लोग गिरने लगे। ये लोग नाइजीरिया, निजर, चाड, सेनेगल और दूसरे देशों के लोग थे। लोग अपनी हिफाजत के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। लोग सिर्फ मदद के लिए चिल्ला रहे थे और अल्लाह का नाम ले रहे थे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। मेरे खेमे के भी कुछ लोग इस हादसे में लापता हैं। आलोचना, निंदा और पीड़ितों की दर्दनाक दास्तां के बीच बकरीद का पर्व बीत ही गया। इस मौके पर पोप फ्रांसिस ने मुस्लिम समुदाय को बधाई देते हुए इस हादसे पर दुख जताया और कहा कि ईश्वर से प्रार्थना करने के इस मौके पर वे भी अपने मुसलमान भाइयों के साथ हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने भी इस हादसे पर संवेदना जाहिर करते हुए उम्मीद जताई कि सऊदी अरब के नेतृत्व में जरूरतमंदों की तुरंत मदद की जाएगी।
रिपोर्ट सुना रही थी प्रगति सक्सेना। और अब बात नेपाल की। भारत नेपाल सीमा पर मधेसी समुदाय के लोगों ने नाकेबंदी कर रखी है और सीमा पर ट्रकों की एक बड़ी कतार खड़ी हो गई है। जरूरी सामानों की सप्लाई रुक गई है। नेपाल सरकार ने भारत के राजदूत को तलब कर पूछा है कि नेपाल आ रहे ट्रकों को क्यों रोका गया। उधर भारत का कहना है कि ट्रांसपोर्टर नेपाल में ट्रकों को भेजने से डर रहे हैं। इन सब के बीच नेपाल में हालात कैसे हैं, ये जानने के लिए चलते हैं बीबीसी संवाददाता प्रतीक्षा घिल्डियाल के पास, जो इस वक्त बीरगंज से काठमांडू जा रही हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रतीक्षा, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए कि आज किस तरह के हालात से आपका सामना हुआ वहाँ पर इस ब्लॉकेट को लेकर के।
सुबह मैं बीरगंज में मौजूद थी, जहां भारत की सीमा के पास हमने फिर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को जमा होते हुए देखा, जो नारेबाजी कर रहे थे और उन्होंने पूरी तरह से बॉर्डर अब भी बंद रखा हुआ है। ट्रकों की आवाजाही बंद है अभी भी दोनों तरफ। हमने देखा कि सैकड़ों ट्रकों की कतारें बीरगंज के पास मौजूद थी और काफी सारे जो ट्रक चालक हैं वो परेशान थे कि उनको कब आगे बढ़ने को मौका मिलेगा। हमारी कुछ ट्रक चालकों से बात भी हुई तो उन्हें हिंसा का डर है अगर वो ट्रक आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए जब तक उन्हें पुख्ता सुरक्षा नहीं मिलती वो आगे लेना चाहते हैं। लेकिन उनको मालूम, कुछ लोग 3 दिन से फंसे थे, कुछ लोग 4 दिन से फंसे थे, उनको मालूम नहीं था कि कितना समय और लगेगा। जो सुनने में आ रही है वो एक ही सीमा की दूसरी तरफ भारत की तरफ काफी सारे ऑयल टैंकर जो तेल की नेपाल में लेकर आते हैं वो वहां पर खड़े हैं और वो भी खाते हैं, जिस वजह से लोगों को डर है कि आने वाले समय में तेल की पेट्रोल की कमी हो सकती है। इस वजह से काठमांडू में पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लग रही हैं, तो स्थिति अभी भी वैसी ही है, बॉर्डर बंद है, आवाजाही बंद है। लेकिन जो कि पिछले कुछ दिनों में कर्फ्यू उठा दिया गया था, तो अब थोड़े बहुत लोग सड़कों पर जरूर निकलने लगे हैं, तो वो एक चीज है जो बची है, बाकी कुछ नहीं।
बहुत शुक्रिया प्रतीक्षा घिल्डियाल नेपाल से इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बारी है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम की। भारत पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग पर बीते लगभग एक महीने से आप रेहान फजल की विशेष श्रृंखला सुन रहे थे। भारत पाकिस्तान के संबंधों में आज़ादी के बाद से ही तनाव एक कड़वी हकीकत है, लेकिन इस कड़वाहट में कई लोग अपनी कला के माध्यम से मोहब्बत की मिठास भी घोलते रहे हैं। आज विवेचना में रेहान फजल बता रहे हैं कुछ ऐसे किरदारों के बारे में जो भारत पाकिस्तान की साझा विरासत हैं।
गुलाम तुम भी थे यारों, गुलाम हम भी थे, नहा के खून में आई थी हसले आजादी, मजा तो तब था कि मिलकर इलाजे जान करते, खुद अपने हाथ से तामीरे गुलसिता करते, हमारे दर्द में तुम और तुम्हारे दर्द में हम शरीक होते। तुम आओ गुलशने लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालय की हवाओं की ताजगी लेकर, और उसके बाद ये पूछें कि कौन दुश्मन है।
पिछले 68 सालों का इतिहास बताता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के सांस्कृतिक सूत्र एक दूसरे से गुथे हुए हैं। प्राचीन भारतीय सभ्यता के केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला पाकिस्तान में है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और हैदराबाद की चार मीनार भारत में है। दोनों मुल्कों के कितने ही लोगों ने एक दूसरे के यहां आकर झंडे गाड़े हैं। ट्रेजिडी किंग दिलीप कुमार को ही ले, पेशावर में जन्मे इस सदाबहार अभिनेता को जितना भारत में पसंद किया जाता है उतना ही पाकिस्तान में भी। और ये संयोग की बात नहीं है कि उन्होंने दिलीप साहब को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से नवाजा है।
जब इन आदमी पाकिस्तान जाए, और खास तौर से जब मैं जाता हूँ, तो मुझको कोई माशी या कोई कल्चरल फर्क महसूस नहीं होता। ये हम जानते हैं कि दोनों मुल्कों में जो तनाव है उसकी बुनियाद सियासी है। इट कॉल्स फॉर पॉलिटिकल एक्शन टू रिलीव द टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज।
एक और शख्सियत जिनका भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी उतना ही सम्मान है, वो हैं लता मंगेशकर। आजादी के बाद दोनों देशों की एक पूरी पीढ़ी उनकी आवाज को सुनकर बड़ी हुई है, और यहाँ तक कि उनकी आवाज उनके दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गई है।
तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो।
लता को पूरे उपमहाद्वीप में महानायिका माना जाता हो, लेकिन उनकी खुद की नायिका कम से कम शुरू के दिनों में नूरजहां रही हैं।
सैगल साहब और नूरजहां, ये फिल्मों में दो मेरे आदर्श थे, और मैं नूरजहां जी का जो गाने का ढंग था, बहुत सुरीली थी वो, और दूसरी बात ये थी कि बोल कैसे कहने चाहिए, ये मैंने उनसे ही उस वक्त सीखा। जब उन्होंने मुझे सुना और मुझे कहा कि तुम रियाज करो, तुम बहुत अच्छा गाती हो, जब भी उसके बाद मेरा नाम हुआ तो मुझे पाकिस्तान से वो फ़ोन करती थी, लेटर्स आते थे उनके।
मुंबई में अपने करियर की शुरुआत करने वाली नूरजहां विभाजन के बाद पाकिस्तान चली गई। वो वहाँ मलकाए तरन्नुम कहलाई, और उन्होंने वहाँ सिद्ध किया कि सच्चे कलाकारों के लिए सीमाएँ कोई मायने नहीं रखती।
मैंने समझा था कि तू
पंक्तियों के रचयिता फैज अहमद फैज ने जिस तरह अपने जीवन के अंतिम दिनों तक लोगों के दिलों पर राज किया, कोई और नहीं कर पाया। उनकी पाकिस्तान से ज्यादा इज्जत भारत में हुई। फैज की शायरी की दुनिया छोटी नहीं थी, उसमें बैरूत के शहीद थे, फलस्तीन के बच्चे थे, पंजाब के किसान थे, और वो तमाम लोग थे जिनके बिना दुनिया दुनिया नहीं कही जा सकती।
रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए।
एक और लेखक जिन्होंने दोनों मुल्कों में नाम कमाया वो थे खुशवंत सिंह। पाकिस्तान में जन्मे और 1947 के बाद भारत आए खुशवंत आदि विद्रोही थे। वो धारा के विरुद्ध तैरने वाले बागी थे, साफ कोई पसंद थे, और किसी भी तरह के पाखंड या नफरत में पढ़ने से इनकार किया करते थे।
मैं गया था खास, मुझे इजाजत मिल गई थी अपने गांव लौटने की, तो उन्होंने इतना इस्तकबाल मेरा, इतना वेलकम किया, सारा गांव का गांव बाहर हार और फूल और खुशामदीद के झंडे, और मुझे ले गए, और मैं अपना घर जहाँ पैदा हुआ पहले 5 साल रहा उसको सजाया हुआ, और जवान लड़के आए हाथ मिलाने के लिए, मैं पूछूं उनसे, कलंगर सिख कभी देखा नहीं पहले, तो हमें सुना था कि यहाँ होते थे। इस गांव में एक छोटा सा गुरुद्वारा होता था गांव में, जहाँ हिंदू सिख दोनों जाते थे, उसी में हमारा स्कूल था, और बाकी तो सब जितने घर थे वो रेफ्यूजीज को दे दिए बट गए थे। हमारी जो हवेली थी उसमें 3 फैमिलीज रोहतक की रहती थी, और गुरुद्वारा मैंने देखा स्कूल तो वो खाली पड़ा था, तो मैंने कहा ये किसी ने लिया नहीं, आपने दिया नहीं, कहेंगे नहीं ये हम अपने सिख भाइयों के लिए खाली रखा है, शायद कभी लौट आए तो।
बेगम अख्तर के बाद गजल गायकी में जिन्होंने सबसे ज्यादा नाम कमाया वो थे मेहंदी हसन। राजस्थान में लूना में जन्मे मेहंदी हसन के बारे में एक बार लता मंगेशकर ने कहा था, मेहंदी हसन के गले में भगवान बोलता है।
जिनसे मिला मेरे दिल को कोई
मलिका पुखराज को भी शोहरत भारत में मिली, लेकिन आजादी के बाद वो पाकिस्तान में बस गईं। हफीज जालंधरी की गजल अभी तो मैं जवान हूं को उन्होंने गाकर अमर कर दिया। भारत में बिताए गए अपने दिनों को याद करते हुए मलिका पुखराज ने बीबीसी को बताया था,
हमारे तो जमाने में पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही था, इसलिए कभी फर्क ही नहीं महसूस हुआ था कि हम यहाँ के हैं या वहाँ के हैं। ये तो बाद में फिर पार्टीशन के बाद ही सब कुछ हुआ, ना कोई इधर जा सकता है ना उधर आ सकता। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े प्यार वाले लोग हैं, और हमेशा जहाँ भी मैं जाती रही बड़े लोग प्यार से मिलते रहे, अब भी प्यार करते हैं हर जगह, यानी बॉम्बे दिल्ली जहाँ भी गई हूँ दोस्त ही दोस्त मिले थे।
तो मैं जवान हूँ, हवा भी खुशगवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन्नुम में हजार है, बहार पुर बहार है, कहाँ चला है साकिया, इधर तो लौट इधर तो आ।
उपशास्त्रीय संगीत के बारीक और मधुरतम तत्वों को सामने लाने का काम बखूबी अंजाम दिया फरीदा खानम ने। उन्होंने गजल गायकी के अंदाज को नए माने दिए और पूरी दुनिया में श्रोताओं के दिलो दिमाग में छा गई। करीब 15 साल पहले वो भारत आई थी।
नॉर्थ रेलवे का बड़ा फंक्शन हुआ था, उसमें मुझे याद किया गया, उसमें जगजीत जी भी तशरीफ लाए थे बॉम्बे से, इकट्ठे हमारा प्रोग्राम हुआ, उसमें फिर और भी ज्यादा इज्जत अफजाई हुई के वाजपेयी जी उसमें तशरीफ लाए, पूरी काबीना आई और एक यादगार उन्होंने हमें ऑनर दिया।
मेरे हम
सूफी और लोक संगीत को न सिर्फ उर्दू में बल्कि सिंधी, पंजाबी और सराएकी में पेश करने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो हैं आबिदा परवीन। वो परंपरागत कव्वाली नहीं गाती, उनके साथ सहयोगी गायक नहीं होते, उनकी अपनी बुलंद आवाज होती है और साथ में ढोलक, तबला और सारंगी। खुशवंत सिंह ने एक बार बीबीसी को बताया था,
आबिदा परवीन क्या आवाज है उसको, तो अल्लाह बिया ने दी आवाज आती है, यहाँ सुनता हूँ। पिछली दफा मैं कराची गया तो मैं तो बुढ़ा हूँ, जल्दी सो जाता हूँ, मगर स्विच किया टीवी तो वो गा रही थी और मैं 3 बजे सुबह तक होटल के कमरे में जागा रहा सिर्फ आबिदा परवीन की आवाज सुनने के लिए। नुसरत फतेह अली खान होते थे, वो भी उन्हीं के थे, और मुझे मालूम है जब पहली दफा वो आए हैदराबाद गए हैं हमारे हैदराबाद में, तो इतनी खलकत थी वहाँ कि पुलिस संभाल नहीं सकी और उनको कहा कि आइंदा आप हैदराबाद आइए तो हमको पहले इतला दीजिए।
लेकिन जहां तक लोकप्रियता की बात है, सबसे ज्यादा नाम कमाया जगजीत सिंह ने। उन्होंने शायर और शायरी दोनों के साथ न्याय किया और ज्यादातर जिंदगी को छू लेने वाले विषयों को अपनी गायकी का विषय बनाया और भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी उतने ही सराहे गए।
तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं, तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब
कहने का मतलब ये कि तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद साझा संस्कृति, जुबान, पहनावा, मौसम, त्योहार, संगीत और परंपराएं न सिर्फ भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़ते हैं बल्कि बेहतर संभावनाओं की ओर इशारा भी करते हैं। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
विवेचना आपको कैसी लगी इस बार की जरूर हमें बताइएगा, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार है। और भारत में आरक्षण की नीति की समीक्षा होनी चाहिए या नहीं, इस बारे में इस बार का इंडिया बोल है। आप भी अगर कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो हमें फोन जरूर कीजिएगा। और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। भारत ने कहा है कि अगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाया तो भारत जवाब देने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ 30 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलेंगे। पोप फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र के विशेष सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। इस सम्मेलन में कई देशों के नेता गरीबी हटाने, गैर बराबरी और पर्यावरण में बदलाव के मुद्दों पर वैश्विक लक्ष्यों पर चर्चा करेंगे। नाइजीरिया की सेना ने दावा किया है कि चरमपंथी संगठन बोको हराम के 200 सदस्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। कहा जा रहा है कि बाकी शहर के नजदीक नाइजीरिया की सेना के सामने चरमपंथियों ने आत्मसमर्पण किया। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। दिन भर में आज इतना ही, आपसे अगली मुलाकात होगी 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। आज स्टूडियो संभाला हेमंत कुशवाहा ने, सभी साथियों संग निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।